तो अभी जयंती दीदी के लिए कुछ सुमन बहन जी लिख करके लाई हैं और उनके मुख से ही आप सुनेंगे।
ओम शांति दीदी। कल पूरा एक वर्ष हो जाएगा कोविड के सूखे का, जिसमें कोई किसी से नहीं मिल पा रहा था, और सागर ने हमें सरोवर में मिलाया, सरोवर में बुलाया, और आप जैसे निर्मल नदियां हमारे मन को उज्जवल करेंगी, ये हमारे लिए एक लकी चांस है, लॉटरी है। थैंक यू दीदी। दो चार लाइनें हमने आपके लिए लिखा है। तुम नाज हो भगवान का, तुम नाज हो भगवान का, और वैदेही की आवाज हो, वैदेही मीन्स दादी जान की, तुम नाज हो भगवान का और वैदेही की आवाज हो, तुम राज हो गुणवान का, तुम राज हो गुणवान का और मैत्री की परवाज हो, तुम इल्म हो ईमान का, तुम इल्म हो ईमान का जिस पर विश्व भी बलिहार है, तुम इल्म हो ईमान का जिस पर विश्व भी बलिहार है, आज तुम्हारे आगमन पर, आज तुम्हारे आगमन पर हम सबका मन भी खुशगवार है, हम सबका मन भी खुशगवार है। तुम रूहानियत की हूर हो, तुम रूहानियत की हूर हो, सारे जहान में मशहूर हो, सारे जहान में मशहूर हो, तुम इंसानियत का गुरूर हो, तुम इंसानियत का गुरूर हो, तुम लंदन की नजरे नूर हो, तुम लंदन की नजरे नूर हो, तुम खुदाई खिदमती दूत हो, तुम खुदाई खिदमती दूत हो, जिसकी बुलंदी विश्वविख्यात है, जिसकी बुलंदी विश्वविख्यात है। आज तुम्हारे अभिनंदन में, आज तुम्हारे अभिनंदन में भावों के भरे अल्फाज हैं, भावों के भरे अल्फाज हैं। तुम खूबियों की ऋतुराज हो, तुम खूबियों की ऋतुराज हो और खुशियों की बहार हो, और खुशियों की बहार हो। तुम करामात हो उस्ताद की, तुम करामात हो उस्ताद की और जहाने हिंद की उपहार हो, और जहाने हिंद की उपहार हो। तुम विश्व सेवा के क्षितिज पर, तुम विश्व सेवा के क्षितिज पर सारा विश्व उसका गवाह है, सारा विश्व उसका गवाह है। आज तुम्हारे आभार में, आज तुम्हारे आभार में इन सभी का दिल भी शुक्रगुजार है, दिल भी शुक्रगुजार है। थैंक यू दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। सचमुच कला विशेष है आपकी, जो इतना सब कुछ आपने लिखा। मार्च महीने को हम शिवरात्रि का मास वैसे मानते ही थे, परंतु अभी तो बाकी भी मैं गिनती करती हूँ तो कितनी आत्माओं ने अपने जीवन को बाबा के सामने समर्पित करते अंतिम श्वास भी बाबा के याद में लिया। शुरू से ही देखते हैं दादा विश्व किशोर, मैं समझती कोई भी यहाँ उसको मिला हुआ नहीं था, परंतु मेरा भाग्य था जो जब मैं बचपन में आती थी मधुबन तो बाबा मुझे उन्हों का संग देते थे, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ दो तीन भाई ही थे और उन्हों में से दादा एक थे, तो उसके साथ भी नज़दीक की मुलाकात रही। तो वो 1968 में देह त्याग करके वतन में गए बाबा से पहले, फिर उसके बाद तो शायद और भी होंगे, परंतु जो मुझे याद आ रहा दादी चंद्रमणि जी, फिर कुंज दादी जी, फिर दादी निर्मल शांता जी, फिर तो पिछले साल दादी जानकी, और इस साल तो एग्जैक्ट शिवरात्रि के दिन ही अपनी मीठी मीठी दादी गुलजार। तो सारा महीना ही मुझे लगता है कि इन फरिश्तों की विशेष हम याद भी करते हैं, परंतु उनके साथ साथ हम भी उड़ना सीखते हैं। तो दादी जानकी के साथ तो बचपन से ही संबंध रहा, उन्होंने ही फिर बाबा के पास भेजा कि बाबा से मिल के आओ विदेश जाने से पहले। तो सारा परिवार दिल्ली में बाबा से रजौरी में मिले थे, तो दादी जानकी ने ही वो प्रेरणा दी थी इस तरह से प्रोग्राम बनाना। और दादी विदेश में भी हम थे तो दादी का मैं समझती हर दो सप्ताह पत्र आता था, और पत्र की ये विशेषता होती थी कि दादी का तो इतना सा टुकड़ा होता था, वो जो एरोग्राम्स होते थे ना उसमें चार हिस्से होते थे, तो तीन हिस्से में एक माता थी इंदिरा माता, शायद कहीं जानते होंगे उसको, तो बहुत वो भी विशेष आत्मा थी। तो तो वो दादी के क्लासेस का सार लिखती थी। सबको मालूम है कि दादी जानकी की विशेषता मनन चिंतन, ज्ञान का मनन चिंतन करके हम सबको ताजा मक्खन खिलाना, हर रोज दादी का ये नियम था। मुरली से पहले या मुरली के बाद में क्लास कराना। और ये दादी को जो वरदान मिला था वो था अमृतसर में करीब 53-54 उन दिनों में 1953-1954। तो दादी वहाँ पर, बाबा गए थे अमृतसर में, दादी सारा प्रोग्राम बना रही थी, तो बाबा के पास सवेरे सवेरे गई। तो बाबा ने एक प्रश्न पूछा, बाबा ने कहा, जनक तुम ये चार सागर मंथन करती हो? तो दादी को ना कहना बाबा को तो अच्छा नहीं लगता था, तो वो शांत हो गई। तो बाबा ने उसको बोला कि जितना तुम्हारा सिर बड़ा है इतना तुम अपनी बुद्धि में, आपका सिर क्यों बड़ा है, ताकि आप तुम अपनी बुद्धि में इतने ज्ञान खजाने को संभाल के रखो, तो तुम रोज विचार सागर मंथन करना, बाबा तुमको नई नई बातें टच करेंगे। तो वो जो उन दिनों से लेके लास्ट तक दादी की ये जो भावना थी कि जो बाबा ने ज्ञान रतन दिए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पॉलिश करके अपने जीवन में धारण करके फिर वो सबके साथ शेयर करती थी। तो वो तीन हिस्सा जो एरोग्राम का होता था उसमें इंदिरा माता वो सारे दादी के क्लासेस का सार लिख करके हमारी लौकिक माता जी रजनी बहन को भेजती थी सिंधी भाषा में। फिर दादी एक टुकड़ा भी लिखती थी, तो उसमें भी बहुत सारे मीठी मीठी बातें होती थी परिवार के लिए। तो दादी की एक विशेषता इसमें से तो आप समझ सकते हैं विचार सागर मंथन। और आप सोचो कि यदि कोई भी जिस बात पर विचार करता है उसके जीवन में उसका प्रभाव जरूर पड़ता। आप किसी ने कुछ नेगेटिव बात आपको सुनाई हो, वो ही आपके दिमाग में बैठ गई, उसका आप मनन चिंतन करते रहो, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? आपकी खुशी भी गायब होंगी, आपको बाबा से कोई नजदीकपन का अनुभव नहीं होगा, आपको वही व्यक्ति का चेहरा सामने आता रहेगा और आपका योग कहाँ गया? बाबा से छूट के वहां चला गया। और वो नेगेटिव बात का ही ज्यादा असर होता, तो वो नेगेटिव बातें जो जमा हो जाती है उसमें फिर क्या होता कि अपनी स्थिति बिल्कुल नीचे आ जाती। उड़ती कला तो छोड़ो, चढ़ती कला भी नहीं, और ही नीचे आने की गिरती कला कहेंगे। और यदि भगवान के बताए हुए महावाक्यों को आप बुद्धि में इस तिजोरी में संभाल के रखो तो उसका जो असर आपके जीवन पर आएगा, आपके विचार शुद्ध है, विचार श्रेष्ठ है, तो आप जो आजकल बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा, मनसा सेवा का आधार शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन जब तक नहीं है तब तक हम शुभ चिंतक नहीं बन पाते। तो शुभ चिंतन उसका आधार ज्ञान का मनन चिंतन। यदि फालतू बातों का चिंतन चल रहा तो ज्ञान का मनन चिंतन छूट जाता। तो ये हर रोज सवेरे सवेरे अपने से पूछो, आज मुझे ऊपर जाना है या आज मुझे नीचे आना है? और हर एक का मन तो यही कहेगा कि हम ऊपर जाएं, स्पेशली जबकि हम देख रहे हैं कि जिन आत्माओं को बाबा ने इतना शक्तिशाली बना करके एक एक को चुन करके इतना सुंदर पाठ दिया, अभी सब वो चले गए एडवांस पार्टी में और बाकी यहाँ बचे दो। 350 में से दो अपने आदि रतन बचे हैं, वो भी बहुत ही सुंदर है, फिर भी हम बाबा को थैंक्स देते हैं कि वो फिर भी हमारे साथ है। परंतु इससे आपको समय की पहचान मिल सकती कि समय कौन सा चल रहा और बाकी संगम युग के दिन कितने बाकी रहे। तो जब ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो चेहरे से ही पता चलता कि इसके मन में क्या चल रहा। नेगेटिव बातें चल रही है तो चेहरा किस प्रकार से होता, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका चेहरा तो फूल जैसा खिला हुआ है या चमक रहा है, कुछ और ही उसकी निशानी नजर आ रही है। तो फिर उस हिसाब से जो बाबा ने हमें रोज खजाना देने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, बिल्कुल एक दिन भी बाबा मिस नहीं करने देते अपनी तरफ से। हम मिस करें वो हमारा भाग्य, परंतु बाबा अपने तरफ से तो हर रोज हमें बहुत सुंदर श्रेष्ठ खजाना देती ही रहती हैं। तो फिर उन बातों को, जैसे आज बाबा ने कहा कि नोट करो, पॉइंट्स लिखो, उसमें बेशक मैंने कम से कम ये मुरलियां 10 बारी तो सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, परंतु फिर भी हर रोज जब मुरली पढ़ते हैं तो कुछ नवीनता नजर आती है, कुछ और अच्छी बातें लगती है, बाबा ने आज किस प्रकार से ये बातें बताई। परंतु सारी मुरली तो नोट कोई भी नहीं कर पाता, परंतु आप 3 बातें उसमें से उठा लो, 3 बातें अपने पास लिख लो। बेशक उन बातों को हमने सुना है, जानते हैं, परंतु सोचना, सुनना और फिर लिखना साथ साथ, उससे वो बात बुद्धि में और अंडरलाइन हो जाती है। तो जो बात आपने लिखी, आपको सारी और मुरली याद रहे या न रहे, कम से कम वो 3 मुख्य बातें जो आज बाबा ने हमें बताई, वो आप नोट करने से आपको वो याद आएंगी। तो बुद्धि में वो ही चलता रहे तो आप सोचो, न सिर्फ आपका चेहरा हर्षित होगा और आप औरों की सेवा अपने चेहरे से भी कर पाएंगे, परंतु आपके मुख से क्या निकलेगा? आपके मुख से यही शब्द निकलेगा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। दादी अमृत वेले योग में जाने से पहले मुरली बाजू में रहती थी, मुरली को उठा करके झांक लेती थी, 5-10 मिनट ही होता था अमृत वेले में जाने से पहले। और दादी को बहुत पर्टिकुलर होता था, क्लास का टाइम मुझे लेट नहीं होना है। दादी 4 बजे से पहले ही 2 मिनट पहुंच जाती थी योग कराने के लिए, परंतु कुछ पढ़ करके फिर जाती थी। पढ़ने का भाव ये था दादी का कि 4 घंटा 5 घंटा जितनी भी आराम की वो नींद मिली हो, परंतु अभी बुद्धि को जागृत करना है। जिस समय आत्मा सो जाती तो न सिर्फ हम कहते हैं कि आत्मा सोई हुई है, शरीर भी उस समय आराम कर रहा, परंतु मन बुद्धि भी उस समय शांत है। यदि मन शांत न होता तो नींद नहीं आएंगी, परंतु रामानुसार ऐसे कायदा बना हुआ है, जो यदि हम हर प्रकार से बाबा की आज्ञा पर चल रहे हैं तो रात्रि को बाबा को याद करने के बाद बहुत अच्छी आराम से नींद आ ही जाएंगी। और फिर आपके स्वप्न किस प्रकार के होंगे? आपके स्वप्न भी या तो सेवा के होंगे या तो बाबा के संग के होंगे, चाहे बाबा साकार चाहे बाबा अव्यक्त, परंतु आपको वही मेमोरीज उत्पन्न होती रहेंगी अपने ड्रीम्स के अंदर भी। कहते हैं ना कि जो दिन बीते वो स्वप्न बीत, तो दिन में आपने बाबा की बातें याद की है तो रात्रि में स्वप्नों में भी बाबा ही आएगा और आपको वो अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा। तो बुद्धि को जागृत करने के लिए उस घड़ी पहले तो दादी कुछ पढ़ती थी बाबा की मुरली, फिर जब योग में बैठती थी दादी कहती थी कि ये ना सोचो कि बस मुझे शांत रहना है। क्यों? क्योंकि सवेरे न सिर्फ बाबा अपनी तरफ खींचता परंतु माया भी अपनी बहुत मीठा मीठा रूप आपको बड़ी अच्छी तरह से शांति में ऐसे खींच लेंगे जो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, सिर नीचे गिरेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप कहेंगे आज तो मुझे बहुत अच्छी शांति का अनुभव हुआ योग में, परंतु वो बाबा की शांति नहीं थी, वो माया की शांति थी। तो बुद्धि को उस समय चलाना होता है, बुद्धि को कुछ टॉपिक देख करके, कुछ पढ़ा हुआ होगा तो बुद्धि को वो टॉपिक देख करके फिर उस अनुसार आप योग में बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे। तो कदम कदम पर जिस तरह से बाबा ने श्रीमत दी है, दादी का ये बिल्कुल पक्का था कि जो बाबा कहते हैं बाबा ने करके दिखाया। बाप दादा इस ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा दोनों आत्माओं ने हर बात करके दिखाई। बाबा कोई भी बात ऐसे नहीं कही होंगी जो बाबा ने खुद ना की हो। तो श्रीमत देखना हो तो दादियों की जीवन से देख सकते कि कैसे उनको बाबा बाबा मुख पर, परंतु बुद्धि में भी बाबा बाबा और जीवन में बाबा की आगे आई बाबा की श्रीमत। जब दादी लंदन में पहुंची है 1974 में, तब तक बहुत छोटा सा स्थान था और सवेरे के क्लास में उस समय कोई हाजिर नहीं होते थे। फिर दिन के टाइम माताएं आती थी, फिर शाम के टाइम कहीं और आते थे, फिर संडे के दिन थोड़ा लेट क्लास होता था तो उसमें और अधिक आ जाते थे, परंतु सवेरे के क्लास में कोई नहीं पहुंचता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीन थी। मैं दादी के साथ गई थी तो हम लोग पहुंचे करीब शाम को 7-8 बजे बाबा के घर में। तो उस समय दादी ने पूछा क्लास सवेरे कितने बजे होता, और उस समय कुछ बड़ी प्रदर्शनी की तैयारियां मैं करके गई थी। तो उसमें ये जो अपनी रोजी बहन जी साउथ इंडिया से, तमिलनाडु से, और फिर डॉक्टर निर्मला और रमेश भाई, उषा बहन, ये चार तो उस समय रूसी बहन फर्स्ट डेलीगेशन में आई, ये सेकंड बारी वो थी मोइनी बहन न्यूयॉर्क वाली। तो ये चार लोग थे और दादी और हम फिर पहुंचे तो डॉक्टर निर्मला उस समय मेन वहां पर थी। तो डॉक्टर निर्मला से पूछा कि क्लास कितने बजे होती, तो डॉक्टर निर्मला ने कहा कि दादी आज तो आपको ट्रैवलिंग चली है, आपका टाइम तो इंडिया का 1:30-2 बज गया है, आप जितने बजे भी कहेंगे। तो दादी फिर भी कहे क्लास कितने बजे होता, तो फिर हंस के उसने बताया कि दादी क्लास में तो हम लोग ही होते हैं तो हम एडजस्ट करके उस समय बैठेंगे। तो दादी ने कहा अच्छा तुम फिर फोन कर लो जो शाम को आने वाले हैं या औरों को कि वो सवेरे पहुंच जाए, परंतु मैं तो जैसे मधुबन का टाइम टेबल है, उन दिनों में मधुबन का टाइम टेबल था 6:30 बजे मुरली सुनाना, फिर दादियों की आयु बढ़ती गई तो उसको थोड़ा चेंज किया, 7 बजे बना लिया, परंतु नहीं तो हमेशा होता था बाबा साकार बाबा के टाइम पर 6:30 बजे सवेरे की मुरली। तो डॉक्टर निर्मला ने किसको फोन किया, उसको उसने बोला अच्छा आप मुझे सवेरे फोन करना तो हम आ सकते हैं। वो अपना अलार्म क्लॉक पर भी नहीं विश्वास रखते थे, आप फोन करना मुझे। तो इस तरह से मैं क्यों ये कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि दादी को जो बाबा ने लक्ष्य दिया था तुम वहां पर मधुबन का मॉडल बनाना। तो मधुबन का मॉडल मीन्स मकान तो बहुत छोटा था, तो मधुबन का मॉडल तो अभी तक भी कहां विश्व भर में इतने 3 कैंपसेस हो और 25,000-20,000 का प्रबंध हो, वो तो कहां पर भी नहीं है आज तक भी। तो बाबा का भाव था कि जो मधुबन का वाइब्रेशन है, जो मधुबन का कार्य है, मधुबन में बाबा की फीलिंग है, वो सब बातें आप ध्यान पर रख करके मधुबन का मॉडल बनाना। तो दादी को ये बिल्कुल पक्का लक्ष्य था कि बाबा का घर, और मैं क्यों ये बताती, क्योंकि अभी जहां जहां पर बाबा के सेंटर्स है वहां पर आप ये लक्ष्य रखेंगे कि हमको इसको मधुबन का मॉडल बनाना है, तो आप सोचो कितनी न शक्तिशाली वातावरण की सारी जो वाइब्रेशंस है वो सब तरफ फैलते जाएंगे और जो भी आने वाले लोग हैं उनको भी बहुत बहुत प्राप्ति होंगी। तो पहुंचते ही दादी ने अमृत वेले का क्लास शुरू करा लिया, अमृत वेला और फिर बाद में मुरली क्लास, और फिर दादी जो भी, और दादी के हाजिरी में तो फिर फर्स्ट टाइम है जो विदेशी लोग ज्ञान लेने आए, और दादी की दृष्टि ऐसे होती थी जो सब आत्माओं को उड़ा सके। दादी देही की कोई बात नहीं देखती थी, भाई है, बहन है, गोरा है, काला है, कहाँ का भी है, ये तो बाबा के घर आने वाला लकी आत्मा है। और फिर दादी को ये होता था कि हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति हो। उसका बिल्कुल था कि जिस तरह से बाबा ने हमें पालना दी है, हम लोगों को इतना ऊंचा उठाया है, बाबा के सब बच्चे जो भी जहां पर बाबा के बच्चे आते हैं उनको घर के वातावरण से ही, एटमॉस्फेयर से ही उनको कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसी तरह से दादी बिल्कुल मधुबन के सिस्टम को स्थापन करने के लिए दादी ने कोई कमी नहीं रखी। मधुबन की जो वातावरण की बात है, मधुबन में जिस तरह से पालना होती है, दादी को सब वही ध्यान पर होता था। तो ड्रामा अनुसार ये भी मैंने देखा है, कोई भी शुभ संकल्प होता तो वो बाबा शुभ संकल्प को पूर्ण करते ही है। तो हम सबको भी ये अनुभव है ना, किसको अनुभव है कि आपका कोई शुभ संकल्प है बाबा मदद करके उसको पूर्ण कर लेता, सभी को नहीं है अभी तक, आप ट्राई करो आपको जरूर ये अनुभव होगा। यदि मेरा कुछ अपने स्व के लिए है, स्वार्थ के लिए है, तो फिर तो बाबा उसमें क्या कर सकते, बाबा भी न्यारा हो जाते। परंतु हमारी शुभ भावना है खुद के लिए, अन्य आत्माओं के लिए, तो भी फिर बहुत अच्छी तरह से बाबा का सहयोग उसमें मिल जाता और बस आत्मा को वो ही शुभ संकल्प रखने की जरूरत होती। तो ड्रामा अनुसार दादी का ये जो बाबा का दिया हुआ कार्य था कि आप वहां पर मधुबन का मॉडल बनाएंगे, तो तुरंत ही, पहले तो बहुत छोटे दो कमरे थे, 74 के दिसंबर में उसका बाजू वाला मकान गिफ्ट मिली, तो उसमें फिर जो सेवाएं हुई, स्थान डबल हो गया, तो भी छोटा ही था परंतु फिर भी डबल हो गया। तो उसमें दादी की एक एक संकल्प बाबा ने पूर्ण किया। अपने लिए कुछ संकल्प उसको नहीं होता था, यदि आपको किसके जीवन की सादगी देखनी हो तो दादियों के जीवन को देखो, किसकी जीवन में बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हो, आप दादियों को देखो। तो रियलिटी में दादी ने, और न सिर्फ एक दादी, सब दादियां, परंतु दादी जानकी के संग रहना हुआ तो सब कुछ देखने को मिला। तो वहां पर जिस तरह से सिस्टम थी, सुबह को क्लास, शाम को क्लास, और फिर दिन भर यदि कोई ग्रुप्स आते थे, जैसे जैसे सेंटर्स खुलते गए, दादी ने बहुत करके सब टीचर्स की पालना बहुत प्यार से की। कहीं तो स्टूडेंट बनकर के, टीचर बनकर के दूसरे देश में जाते थे सेवा के लिए, और कहीं फिर दूसरे देश में ना भी जाए परंतु वहां पर भी हम लोगों को हर प्रकार से सहयोगी थे। मानो कि दादी ने ऐसे सिस्टम बनाई कि जरूरी नहीं है कि टीचर सिर्फ सेंटर पर रहने वाली बहनें हो, हाँ वो तो है ही, परंतु उनसे ज्यादा काम हो जाएगा। दादी को शुरू से ही था कि कार्य बढ़ता जाएगा, कार्य बढ़ता जाएगा। तो दादी सभी को उस दृष्टि से देखती थी कि हर एक टीचर बन सकता, हर एक बाबा के कार्य में कुछ न कुछ सहयोग दे सकता, चाहे वो माता हो। और यदि परिवार भी ज्ञान में सारा है तो दादी कई माताओं को विश्व की सेवा पर यहाँ वहाँ वहाँ भेजती रही, और फिर बेशक वो 3 मास के लिए निकले, 6 मास के लिए निकले, परंतु उनों का भी अनुभव बढ़ जाता और जहाँ पर सेवा करती वहाँ भी उनों को पालना मिल जाती, तो दोनों को बहुत फायदा होता। और फिर वो जो बहनें होती थी जो मानो थोड़े समय के लिए जाती, तो वो फिर जो वहाँ के लोकल एरिया के मुख्य है जरूर उन आत्माओं का उनों के साथ कनेक्शन कराती रही। तो अभी मैं देखती हूँ कि जो विश्व में 40 वर्षों के अंदर 120 देशों में बाबा का कार्य फैल गया, भगवान के पास प्लान है, परंतु भगवान को भी कुछ ऐसे खिलौने चाहिए जिन द्वारा वो कार्य करा सके। तो दादी ऐसे खिलौना थी जो कहती थी कि जैसे वो मालिक चलाएगा वैसे मैं चलेंगी, मालिक चाबी देगा तो वो खिलौना डांस करता। तो दादी यही एग्जाम्पल देती थी, मैं भी बाबा के हाथ में खिलौना हूँ, बाबा मुझे चाबी चलाता है तो मुझे भी प्रेरणा आती है कि हाँ अभी ये करे अभी वो करे। तो आप भी ये ना सोचो कि हम घर में रहते हैं तो सेवा क्या करें। भाइयों के लिए भी दादी बहुत कुछ सेवाएं सोच लेती थी, और जैसे कार्य बढ़ता गया, बाबा के बड़े मकान बनते गए तो उसमें कोई रिसेप्शन पर ड्यूटी करता, कोई टेलीफोन रिसेप्शन टेलीफोन का करता, कोई फिर सिक्योरिटी का करता, कोई फिर केयरटेकर का करता है। भाई चाहे बहन दोनों ही हर प्रकार से अपने स्वास्थ्य भी सफल करे, अपनी सेवा का कुछ न कुछ करके भाग्य बनाए। दादी की बहुत ब्रॉड बुद्धि थी, वो ये नहीं सोचती थी कि सिर्फ ये कर सकते और ये नहीं कर सकते, नहीं, हर एक को चांस है जितना जो करने चाहे, तो फिर उसमें सेवा फैलने का बहुत अच्छा चांस बन गया। मैं सोचती हूँ कि दादी ने उससे पहले भारत में भी बहुत सेवा की, और वो 2-3 थे वो तो बहुत त्यागी जीवन के दिन थे, परंतु न सिर्फ बाहर का त्याग, मानो कि जिस समय बाबा को छोड़ के ये लोग सब दिल्ली बॉम्बे आदाद गए, उनका मन नहीं होता था कि हम कहीं भी जाएं, वो तो उन्होंने सोचा था हम तो बाबा के मम्मा के संग ही रहेंगे जीवन के अंत तक, फिर हम सत्युग में परम धाम में पहले इकट्ठे जाएंगे फिर सत्युग में इकट्ठे आएंगे, सबके मन में यही भावनाएं थी। परंतु फिर जिस समय सेवा शुरू हो रही थी, बाबा को भारत की भी सेवा करानी थी, तो बाबा फिर एक एक को उनकी विशेषताओं देख करके उनको हिम्मत भर करके फिर उनको कहाँ न कहाँ सेवा पर भेज ही देते थे। तो मधुबन से पत्र आता था कि उस समय दिल्ली में दादी जानकी, मनोहर दादी, दीदी मनमोहिनी, ये 3 थे। फिर और स्थानों पर भी सब दादियां ही सेवा करती थी, वही थे और कोई तो था भी नहीं। तो उस समय 3 दादियां वहां एक छोटे से स्थान पर रहती थी। तो बाबा का पत्र आता था, बाबा अभी 4 बहनों को भेज रहा, फिर दूसरे दिन आता था बाबा अभी 5 बहनों को भेज रहा या 7 बहनों को भेज रहा। तो आप सोचो छोटा सा स्थान और उनका भोजन क्या होता था, एक दिन की बात नहीं कुछ मास तक उनका भोजन होता था सूखी रोटी और नमक, दैट्स इट। कितने समय तक उनका त्याग का जीवन इस तरह से चला। परंतु फिर तो सेंटर्स बनते गए, सेंटर्स की स्थापना में फिर अनेक सहयोगी भी बनते गए। तो फिर जब बाबा के साकार होते हुए ही 400 सेवा केंद्र थे, और दादी उस समय पूना सेंटर संभालती थी, और बॉम्बे आना जाना या कहीं और जगह भी जब चांस मिले वो सेवा तो चालू ही थी, परंतु विशेष दादी का पूना का बेस बाबा ने रखा था। और बाबा ने उसको बोला था कि तुमको कई निमंत्रण मिलेंगे, यहाँ आओ वहाँ जाओ, परंतु आप जाना बेशक परंतु आपका ठिकाना यही होगा। बाबा को मालूम था कि दादी जैसे आत्माएं जो बिल्कुल लगातार बिल्कुल उसमें कभी वो थके नहीं, कभी वो होपलेस न बने, ऐसी आत्मा चाहिए जो कई आत्माओं को तैयार करे जो फिर विश्व सेवा में उससे योगी बन सके। तो जब पहले सेंटर शुरू हुए सब दादी के कनेक्शन से ही सेंटर्स थे, क्योंकि वहां की जो बहनें थी, एक स्थान था जहां भाई था, परंतु बाकी सब स्थानों पर बहनें ही थी, तो उन्होंने कनेक्शन के द्वारा ही फिर सेंटर की स्थापना हुई। तो दादी ने जो 14 वर्ष में 14 या 16 वर्ष दादी पूना में रही, तो सेवा के लिए कहां कहां जाना, परंतु उसी स्थान पर रहना, ताकि उन्होंने जो बाबा जानते थे, बाबा के पास त्रिकालदर्शी है और बिल्कुल हर बात का प्लान है, ये मुझे अनेक प्रकार के प्रूफ है। तो बाबा ने जो वो समय प्लान बनाया, दादी यहाँ रहे, इन माताओं को वो पालना मिले, फिर वो विदेश जाएंगी, फिर वो अपने देश में सेंटर की स्थापना में मदद करेंगी, तो दादी उन सब बातों के निमित्त थी। तो जब भारत की सेवाएं इतनी अच्छी हो गई, जो फिर सब स्थानों पर दादियां जो भी थी बहुत आराम से रहती थी, मीन्स जो पहले का त्याग था वो रूपरेखा बदल गई थी बाय 1969। फिर 1974 में दादी 59 ईयर्स एज में, जब कोई बहुत करके 60 वर्ष कहते हैं ना, 60 तो उठाई लाठ, तो जब उस उम्र में पहुंचते हैं, सोचते हैं कि अभी तो मेरा टाइम है जो मैं शांति से एक स्थान पर बैठ करके जो मेरे बच्चे हैं, पोतरे हैं, वो मुझे अच्छी तरह से संभालेंगे, तो नॉर्मल सिस्टम तो ये होता है। और दादी 59 इयर्स में अपना सारा जो सुख सुविधाएं थी, जो सारा जहां पर हर प्रकार से सेटअप था, बाबा के कहने पर, भाषा भी नहीं आती थी दादी को इंग्लिश, बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ी थी परंतु बहुत ज्यादा नहीं वो भी, और दादी ने हिम्मत रख करके दादी विदेश की सेवा पर आई। और फिर 91 ईयर्स एज में, कोई सोच सकता है कि 91 ईयर्स एज में कोई नया जॉब ढूंढे या नया जॉब प्राप्त हो, तो 91 ईयर्स की एज में दादी ने फिर चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टाइटल दादी को मिला। दादी ने उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, परंतु ड्रामा अनुसार दादी प्रकाश मणि के बाद दादी जानकी का ही नाम था, तो फिर वो चीफ बन गई 91 ईयर्स एज। आप सोचो आपकी आयु क्या, और क्या आप अभी कभी सेवा में थक जाते? और एक तो है शारीरिक थकान, ठीक है वो कब कब होगा, परंतु मानसिक थकान उसका कारण होता है दो, एक तो कहां संस्कारों का टकराव होता, या तो दूसरा खुद के लिए हम निराश हो जाते हैं, अभी मेरी तबीयत नहीं मानती, मेरी आयु नहीं मानती, फलानी बात, हम कुछ न कुछ बात में अटक जाते, तो फिर ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। परंतु जब दादी से कहते थे कि दादी आपको रिटायर नहीं होना है, दादी का तब तक दादी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगी थी, दादी ने कहा मैं टायर्ड थोड़ी हूं जो मैं रिटायर करूं। तो दादी की मानसिक स्थिति पर सदा ऊपर, सदा ऊंची, कोई भी बात में दादी होपलेस नहीं होती थी, सदा उमंग, उत्साह और हिम्मत। बचपन से ही दादी की कहानी है हिम्मत की कहानी, और बचपन में भी उनको बाबा के लिए बहुत स्नेह अथवा बाबा के साथ फैमिली फ्रेंडशिप थी, परंतु उससे भी दादी को एक खोज थी, भगवान। और जिन साधुओं के साथ मिलती थी, क्योंकि उनके घर में बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स थे, जहां पर कहां फार्म्स थे तो कहां कुछ अनाज है, कुछ सब्जियां है, कुछ फल है आदाद, तो उनके बगीचों में कुटिये बने होते थे जहां पर साधु लोग आकर के रहते थे। ये दादी के लौकिक घर की बात। तो उनको जब कुछ भी निकलता था तो हर रोज पहले साधुओं को खाना देते थे उसमें से, और फिर बच्चों को देते थे, फिर जानवरों को देते थे, जो भी गायें हैं, जो मछलियां हैं, उन सबको खाना मिलता था, और फिर मिलता था बहनें और माताओं को, भाइयों को, और फिर नेक्स्ट माताओं को। तो ये सिस्टम बनी हुई थी। तो दादी की पहचान अनेक गुरुओं के साथ थी, क्योंकि सब उस परिवार को जानते थे। तो जिससे दादी मिलती थी, दादी उनसे एक प्रश्न पूछती थी, आपने भगवान का अनुभव किया है, आप मुझे भगवान के अनुभव की बातें सुनाओ। आप किसी गुरु को कहो कि आप मुझे भगवान के बारे में बताओ, तो आपको वो जितने शास्त्र पढ़े हुए होंगे उस अनुसार बताएंगे, फलानी बात फलानी बात फलानी बात फलानी बात। परंतु भगवान का अनुभव बाबा के बच्चों को है। तो दादी वो चाहती थी बचपन में ही। फिर जब एक दिन वो बगीचे में थी, बाबा को देखा, तो उसको लाइट का साक्षात्कार हुआ। बस बाबा का चेहरा गुम है, लाइट ही लाइट। उन दिनों में ही बाबा की ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड थी। तो तब से जो निश्चय हुआ, बस मुझे भगवान का बन के रहना है। तो हम लोगों का निश्चय किस प्रकार से है, हम दादियों को देखें, उन्होंने कितनी बातों को सहन किया, किस प्रकार से त्याग तपस्या और अथक सेवाएं की, और हम अपने आप को देखें। तो बाबा कहते हैं ना कि हर एक का नंबर पता ही चल जाता, बाबा मम्मा नंबर वन नंबर टू, और फिर उसके बाद और जो अष्ट रत्नों में है वो भी प्रत्यक्ष, समय अनुसार हर बात प्रत्यक्ष होती जा रही। बाकी यहां पर 21 तारीख कल का दिन नहीं, 22 तारीख को आप लोग होंगे यहाँ, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि दादी गुलजार का ब्रह्मा भोजन होगा 22 तारीख के दिन पर। तो दादी गुलजार के बारे थोड़े कुछ मैं सुनाती हूँ, घड़ी फास्ट भागती है। तो दादी गुलजार के लिए दो शब्द कह सकते हैं, प्यूरिटी और शांति। दादी, वैसे तो सब दादियों के लिए हम कहेंगे उनकी प्यूरिटी की स्टेज कितनी ऊंची, परंतु ऐसे आत्मा जिसको कलयुग की कोई मालूम ही नहीं कि कलयुग क्या होता है, ये थी दादी गुलजार। क्योंकि उनकी 8 वर्ष की आयु में ही ओम मंडली स्कूल में उनका दाखिल होना हुआ, फिर तो 9-10 वर्ष की आयु में ही माँ के साथ वो समर्पित होकर के बाबा के यज्ञ में आ गई। तो संसार का जो वाइब्रेशन है उसको कुछ मालूम ही नहीं, इतनी प्योरिटी की स्टेज। बचपन से ही कुछ उसके ऊपर बाहर का प्रभाव बिल्कुल नहीं। तो तभी आप सोचो कि भगवान ने जिसको चुना छोटे नंदीगण का पाठ बजाने के लिए, तभी इसको ही चुना। और इसकी मन की स्थिति एक तो शुद्ध पवित्र, परंतु साथ ही साथ बिल्कुल शांत। ऐसे नहीं कि दादी सुन नहीं रही है, परंतु दादी बहुत ही कम शब्दों में आती थी। दादी अपनी एनर्जी को कभी वेस्ट नहीं करती थी। बचपन में ही बाबा को मालूम था कि उसको ट्रांस का पाठ मिला हुआ है, क्योंकि पहले दिन ही जब सत्संग में गई अपने माता के साथ, तो उसको साक्षात्कार उसी दिन होने लगे। तो बाबा तो समझ गए कि ये स्पेशल आत्मा है। और फिर जब कुंज भवन कराची में कई और छोटी छोटी कुमारियां भी थी, तो सोशल एक्टिविटी तो चलती ही है, लेन देन, बातचीत करना, चिटचैट करना, तो सब समर्पित, परंतु आपस में चिटचैट। तो बाबा ने देखा कि इस आत्मा को कुछ और पालना की आवश्यकता है, उसका आगे का रोल समझकर। तो बाबा ने उसको कुंज भवन से निकाल कुछ समय के लिए अपने पास बाबा भवन, जहां बाबा रहते थे परिवार के साथ, लौकिक परिवार के साथ, वहां पर रखा। तो वहां पर उसको साइलेंस का अधिक अनुभव, लिखने की, बाबा उसको कई बातें बताते थे लिखने के लिए, तो उसकी लिखने की भी कला बढ़ती गई। तो इस प्रकार से जो उसकी बहुत विशेष पालना रही, उसका भाग्य, परंतु उसका खुद का भी पुरुषार्थ और उसका निजी स्वभाव, शांति की देवी। बिल्कुल दादी के संग आओ तो आपके मन में कुछ भी हलचल होंगी तो वो शांत हो जाएंगे। आपके मन में ये होगा कि मैं दादी से ये पूछूं, ये पूछूं, ये पूछूं, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। तभी तो बाबा उसको एक और टाइटल देते थे, निस्संकल्प देवता। दिल्ली के सारे कारोबार की जिम्मेवारी पहले दादी पर थी, फिर दादी जैसे मधुबन में अधिक समय रहने लगी तो फिर वो खुद ही संभाल लेती थी, परंतु फिर भी दादी कुछ ध्यान रखती थी। परंतु बाबा का ये कहना था, ये है निस्संकल्प देवता, जिस समय कार्य आता दादी उसमें अपना बहुत अच्छा पाठ बजाती है, परंतु फिर फिनिश, दादी अंदर अपनी साइलेंस की शक्ति जमा करती रही। तो यदि आज हम भी पुरुषार्थ करने चाहें तो ये दो बातें दादी से हम सीखें, कि अपने मन के ऊपर बेशक हमारा वो भाग्य नहीं है जैसे दादी का, कि 8 साल की उम्र में आ जाए, कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ है, परंतु आजकल छोटे बच्चों की भी स्थिति वो नहीं है जैसे उन दिनों में 8 साल के बच्चे की होती थी। परंतु हम अपने लिए सोचें, किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का, किसी वातावरण का मेरे ऊपर प्रभाव न पड़े, परंतु मैं बाबा के संग रहूं ताकि वो वाइब्रेशंस का प्रभाव औरों के ऊपर पड़े। और सेकंड, जितना समय मिले जिस बात का मुझे संकल्प करना है वो संकल्प करके, काम करके पूरा करें, फिर वापस आंतरिक साइलेंस की शक्ति जमा करें। दादियां अव्यक्त होकर के उड़ के गई, परंतु साकार में हम लोगों को अभी तक बाबा को प्रत्यक्षता के लिए सेवा और भी करनी होगी। तो चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, अपने को हम सेवा में तो बिजी रखें, परंतु साथ ही साथ जब चांस मिले इंटरनल साइलेंस का हम शक्ति बढ़ाते जाएं। तो ड्रामा अनुसार आप लोगों का फिक्स था यहाँ आना इन्हीं डेट्स में, तो आप लोगों को बहुत बहुत सुंदर चांस मिला है कि आप ऐसे समय पर हाजिर हैं। आप पट्टी को खूब एंजॉय करना, एक एक घड़ी वैल्यूबल है संगम युग की, परंतु विशेष मधुबन में आकर के बट्टी करना वो तो बहुत बड़ा भाग्य है। अभी बाबा की याद में बैठती हैं और समाप्त करती हैं। ओम शांति।